ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे इस सप्ताह संसद ने पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया है। गुरुवार को लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया गया था, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन और 232 ने इसका विरोध किया था। शुक्रवार को राज्यसभा में इस विधेयक को पारित किया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरस्त विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। रेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में आधुनिक पंबन पुल का उद्घाटन देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह समुद्र के पानी में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पुल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला और शिल्प को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आयोजित किए गए बस्तर पंडुम की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष बस्तर पंडुम में देश के हर आदिवासी जिले के कलाकार शामिल होंगे। इस बीच तेलंगाना में भद्राद्री कोटा गुडेम जिले में 20 महिलाओं सहित 86 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए गए। वहीं आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में माओवादी पार्टी के 11 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को अतिरिक्त 1,280 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि मंजूर की है। गृह मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि सरकार ने आपदाओं के बाद इन राज्यों में तत्काल मंत्रालय स्तर की केंद्रीय टीमों को भेज दिया था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कल मुंबई में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद GJC द्वारा आयोजित इंडिया जेम एंड ज्वेलरी शो GJS 2025 में उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक निर्यात 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल स्टार्टअप्स की सहायता के लिए मंत्रालय में एक हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना की घोषणा की। इससे नौकरशाही से जुड़े मुद्दों का समाधान होगा। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में उन्होंने कहा कि इसमें स्टार्टअप संस्थापकों को शिकायतें दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों का पंजीकरण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा सकेगा। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,354 हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। भूकंप के केंद्र मांडले पहुंचे संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने राहत प्रयासों के लिए मानवीय और सामुदायिक संगठनों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मदद के लिए यहां है और दुनिया को म्यांमार के लोगों के पीछे एकजुट होना चाहिए। भारत और अन्य देशों के बचाव दल बचाव प्रयासों में सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। भारत ने अपने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत शनिवार को म्यांमार को अतिरिक्त 442 टन खाद्य सहायता पहुंचाई। अमेरिका ने शनिवार से कई देशों से आयात पर 10% शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। बेसलाइन टैरिफ अमेरिका के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमा शुल्क गोदामों पर लागू हो गया। इस शुल्क की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सप्ताह की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी, जिसके बाद अमेरिका के सहयोगियों और अन्य देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मौसम विभाग ने बुधवार तक गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। विभाग ने कहा है कि सोमवार और मंगलवार को दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार के दौरान पूर्वी भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।